ओमकार शारदा की बात मान गया और उसे लेकर गांव आ गया। उसने गांव में लाकर शारदा को और तुम्हें हमारे पास छोड़ दिया। हम बहुत खुश थे, तुम हमारे लिए कभी भी पराई नहीं थी। हमेशा से मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह ही रखा है। जब तुम मुझे प्यार से नानी पुकारा करती थी तो मेरा दिल वहीं पर फूल जाता था। तुम्हारे नाना जी की तो तुम जान हुआ करती थी, लेकिन शायद यही सब था जो शारदा नहीं देख पा रही थी। तुम्हारे पिता सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं थे, एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। उन्होंने शारदा को फिर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया और शारदा अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने लगी। इसी बीच शारदा को परीक्षा देने के लिए शहर जाना था। तुम्हारे नाना जी उसके साथ गए थे क्योंकि शारदा माँ बनने वाली थी, ऐसे में उसका अकेले जाना सही नहीं था। पर ना जाने शहर में उसे वक्त क्या हुआ कि हमें ये खबर मिला कि एक बस एक्सीडेंट में तुम्हारे नाना जी चल बसे और तुम्हारे नाना जी को बचाने के चक्कर में शारदा घायल हो गई, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, मैं कैसे उसे वक्त खुद को संभालती। वक्त लगा लेकिन मैं खुद को संभाल लिया। आखिर मुझे तुम्हारे लिए फिर से खुद को संभालना ही पड़ा क्योंकि शारदा, ओमकार और तुम्हारे साथ वापस शहर चली गई थी। लेकिन दुख अभी बहुत थे, ऐसा लग रहा था जैसे दुखों का अभी पहाड़ आना हमारे ऊपर बाकी है। शारदा पहले तो कभी कभार घर आया करती थी या फिर फोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने घर आना कम कर दिया और फोन पर बात करना भी कम कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में शारदा है ही नहीं। मुझे बहुत हैरानी हुई। एक महीना, दो महीना होता तो शायद मैं इस बात को समझ लेती, लेकिन पूरे तीन साल तक शारदा ने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही शहर से कभी वापस आई। मैं शारदा से मिलने शहर गई थी, पर वहां जाकर देखती हूँ तो वहां पर तो नज़ारा ही कुछ और देखने को मिलता है। ओमकार का वो घर, वो अब बिक चुका था और पड़ोसियों से पता चला कि ओमकार की मौत तो 2 साल पहले ही हो गई है। ओमकार मर चुका है ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अगर वो मर गया है तो शारदा कहाँ है। मैं अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी मैं पूरे शहर में। ओमकार जिस कंपनी में काम करता था, मुझे वहां से पता चला कि शारदा ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी किसी अभय नाम के आदमी से। अभय का नाम सुनकर मुझे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये अभय वही है जिससे सालों पहले हमने शारदा की शादी नहीं होने दी थी। लेकिन अभय और शारदा एक कैसे हो गए हैं और ओमकार की मौत कैसे हो गई है और शारदा ने अभय से शादी कर ली है, ये कैसे हो गया है? भटकते भटकते मैं उस जगह पर जाती हूँ जहाँ पर इस वक्त शारदा अभय के साथ रह रही थी, पर वहाँ जाकर जो मुझे पता चला उससे मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था। शारदा सच में अभय के साथ शादी करके एक ऐशा और आराम की जिंदगी जी रही थी और तुम्हें उसने एक हॉस्टल में रखा हुआ है। पर जो मुझे उसके आगे पता चला वो सुनकर मुझे उस दिन पर अफसोस होने लगा जब मैंने शारदा को जन्म दिया था। शारदा ने किसी दूसरी औरत का घर उजाड़कर अपना घर बसाया था। मुझे उस औरत के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उसका नाम सुना था मैंने। उसका नाम सीमा था। कितनी बार कहा है तुमसे, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। उस आदमी के गुस्से भरी आवाज सुनकर सीमा बुरे तरीके से रो रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सब ठीक नहीं है। हमारे बीच सब कुछ तो अच्छा था, फिर अचानक से क्या हुआ, सीमा ने रोते हुए कहा। अभय ने अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में खींचते हुए सीमा की तरफ देखकर कहा, रोना बंद करो, मुझे तो तुम्हारे होने से भी नफरत है। लेकिन सीमा ने अभय का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अभय, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अभय हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं अपने बच्चों को लेकर, भाड़ में जाओ। ऐसा कहते हुए अभय ने सीमा को धक्का दे दिया जिससे वो नीचे जमीन पर जा गिरी। इससे पहले कि अभय अपने कदम आगे बढ़ा पाता, सीमा ने अभय के पैरों को पकड़ लिया और उसे कहने लगी, नहीं अभय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। अभय गुस्से में सीमा को देखने लगता है। जब वो देखता है कि सीमा उसके पैरों को नहीं छोड़ रही है तो अभय अपनी बेल्ट को खोलकर सीमा को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी उसे अपने दूसरे पैर पर एक तेज दर्द का एहसास होता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो ये आस्तिक था, जो इस समय एक छोटा बच्चा ही था। उसने एक तेज पेन की नोक अभय के पैर पर चुभा दी जिससे उसके दूसरे पैर में दर्द होने लगा। पेन से कितनी ही चोट लगती, लेकिन अभय अपने गुस्से के आगे अंधा हो चुका था। उसने आस्तिक को उठाया और बेल्ट पर पटक दिया। वो बेल्ट जो अब तक सीमा को मारने के लिए उठाया गया था, अब उसके बाद आस्तिक के शरीर पर पड़ते हैं। सीमा आस्तिक को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन अभय ने सीमा के बालों को पकड़कर उसे दूर खड़ा कर रखा था और अपने दूसरे हाथ से सिर्फ आस्तिक के शरीर पर बेल्टों की छाप छोड़े जा रहा था। आस्तिक एक छोटा सा बच्चा था। बेल्ट की मार से वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा था। जब तक बेल्ट टूट नहीं गई और आस्तिक बेहोश नहीं हो गया, तब तक अभय अपनी हैवानियत से पीछे नहीं हटा। उसने बेल्ट को वहीं कोने पर फेंक दिया और सीमा को कमरे के कोने में धक्का देकर वहां से चला गया। कुछ साल बाद अभय कुर्सी पर बंधा हुआ है और खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है। वो खुद के ऊपर रहम करने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन जिसने भी उसे कैद में रखा है उसे गालियां भी दे रहा है। तभी उस कालकोठरी का दरवाजा खुलता है और अपनी खतरनाक आभा के साथ एक शख्स अंदर दाखिल होता है। पहले कुछ पल तो अभय ने उसे पहचाना ही नहीं था। जैसे जैसे रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती जा रही थी, वैसे ही अभय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो उस शख्स को देखकर घबराते हुए कहता है, आस्तिक शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जिंदा देखकर तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। क्या सोचा था कि मैं आग में जलकर मर चुका हूँ?